इसी प्रकार से उपासना करने वाले के ऊपर जब घोर आपत्ति का समय आता है, घोर आपत्ति संसार में क्या है तो मृत्यु है। मरण काल आने पर मन सब चीजों से हट करके झट एकाग्र होता है। कहाँ एकाग्र होगा? तो जिस वासना को दृढ़ किया है वहीं एकाग्र होगा। जन्म भर जिस वासना को तुमने प्रबल बनाया है, आपत्ति का समय आने पर मन उधर ही जाएगा। इस प्रकार का जो उपासक है, उपासना करते करते जिसके अंदर ओंकार की ये सर्वरूपता, वेद रूपता, देव रूपता, ब्रह्मा विष्णु इत्यादि सर्वरूपता दृढ़ हो गई है, उसको वहां पर अपने अहं के अंदर होने वाला, प्रत्यगात्मा में होने वाला जो ब्रह्म रूप है वो मिल जाता है। क्योंकि मृत्यु की विशेषता है कि उस समय अपनी कामनाएं सब निवृत्त होने लगती है। एक राजा था, महान भोगी था। महान भोगी था, धीरे धीरे बुढ़ा हो गया। तरह तरह के वैद्यों से रसायन लेके सेवन करता रहा। अंततो गत्वा शरीर रसायन से भी काम नहीं करने लगा। अब महात्माओं के पास जाने लगा, कोई जड़ी बूटी दे देगा, कोई एक परमहंस महात्मा उधर से निकले उनके पास भी गया, अपनी सारी बात बतलाई। महात्मा ने उसको एक गोली दी और कहा दूध के साथ पी लेना, और उसके सामने ही उन्होंने चार गोली ली और दूध के साथ पी ली। उस दवाई के प्रभाव से उसके शरीर में विशेष शक्ति का संचार हुआ, उसको बड़ा अच्छा लगा। दूसरे दिन विचार करने लगा, एक गोली से मेरे अंदर इतने शक्ति का संचार हुआ तो महात्मा तो चार गोली ले चुके। अगले दिन जब महात्मा के पास गया तो महात्मा ने उससे पूछा, भाई दवाई ने ठीक काम किया? बोले, बहुत बढ़िया दवाई रही, मुझे कुछ और गोलियां दे दीजिए। और ये बताइए कि आपने चार गोली ली, उसका क्या असर हुआ? उन्होंने कहा, आज तो नहीं बताऊंगा, तेरे को देख एक दो गोली देता, ये दो गोली ले लेना और जो कुछ भी तेरे को आनंद करना हो सो कर लेना, क्योंकि कल तू मर जाएगा। बस आज आज का दिन है, कल मर जाएगा। अब उसने दो गोली तो ले ली, अब उसका जी घबरावे, बार बार मृत्यु आवे सामने, खाना पीना पहनना ओढ़ना कोई चीज अच्छी न लगे, बार बार आवे कल सवेरे तो मर जाना है, कल सवेरे तो मर जाना है। अगले दिन सवेरे फिर महात्मा के पास पहुंचा, महात्मा ने कहा क्यों भाई, अच्छी तरह से सब दवाई का फायदा उठा लिया? उसने कहा जी कुछ नहीं, मरने के डर से और ज्यादा हमारी हालत खराब हो गई। बोले तो ये तेरे प्रश्न का जवाब है, तेरे को तो मैंने कहा था रात भर के बाद मृत्यु है, तब तेरा ये हाल हो गया, और मेरा ये निश्चय है कि अगले क्षण मृत्यु हो सकती है। अगले क्षण सांस आएगा या नहीं इसका कोई भरोसा नहीं। निश्वासे नहीं विश्वासः कदा रुद्धो भविष्यति। शास्त्रकार कहते हैं सांस बाहर जाने के बाद कोई विश्वास नहीं है कि वापस आएगा, इसलिए जिस समय सांस छोड़ो उस समय विचार करो मरने का क्षण है। अब ये किसके काम की चीज है? जो ज्ञान चाहता है। नहीं तो कहोगे महाराज आप तो सारे मजे ही किरकिरा कर देंगे संसार का। जैसे उसका बेचारा राजा का मजा किरकिरा कर दिया महात्मा ने मृत्यु की बात सुना के। तो यदि संसार का मजा चाहते हो, किरकिरा नहीं होने देना चाहते, तब तो ये ओंकार की उपासना काम की नहीं। परंतु यदि इस मजे को किरकिरा करने की चिंता नहीं है, उस परम आनंद की चिंता है जो तुम्हारा स्वरूप है, तब ये काम करेगी। तो विचार करो, राजा चाहे जितना भोगी था, जब मृत्यु सामने आकर के डोलने लगा तो सारी कामनाएं और सारी भोगेच्छाएं निवृत्त हो गईं। ठीक इसी प्रकार से उस सुनार के लड़के के ऊपर जब भयंकर आपत्ति, मृत्यु रूपी आपत्ति, अब तो पता लग जाएगा कि ये विष्णु नहीं है, तो ये मृत्यु जैसी स्थिति हो गई। इस भयंकर आपत्ति के आने पर उसकी वृत्ति सर्वथा विष्णु के साथ एक हो गई। विष्णु के स्वरूप का उसने पहले ही ध्यान कर रखा था, उसकी वासना से वो पहले ही वासना वाला हो गया था। अब इस काल के अंदर सचमुच के विष्णु वहां आ गए। इसी प्रकार जिस ब्रह्म रूप का हम ओंकार के द्वारा ध्यान कर रहे हैं, जिस समय अंतःकरण इन सारे दोषों से रहित हो जाएगा, उस समय स्वयं परब्रह्म परमात्मा ही हमारे अंदर प्रकट हो जाएंगे। ये ज्ञेय ब्रह्म हुआ, और जब तक हम उपाधि का सहारा लेकर के चल रहे हैं तब तक ध्येय ब्रह्म है। अब इस ज्ञेय ब्रह्म का स्वरूप बतलाते हुए इस प्रत्यक्ष चीज को कहते हैं जीव का प्रत्यक्ष रूप कहाँ साक्षात होता है, तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति। भगवान भाष्यकार इन तीनों को बड़ा भारी जंगल बतलाते हैं। गहन विपिने गाह मानोप्यगाधः, ये बड़ा भारी विपिन है अर्थात जंगल है। इसके अंदर हम निरंतर डूब रहे हैं, परंतु कभी भी इसका अंत नहीं आता। परमेश्वर के सृष्टि की विशेषता ये है कि ये गोल गोल चलती है। परमेश्वर ने ऐसी सृष्टि का निर्माण किया कि जिसको बार बार उनको न करना पड़े। जैसे कुछ साल पहले एक घड़ी आती थी, ऑटोमेटिक वॉच, उसको तुम हाथ में बांध लो, अब तुम्हारा हाथ इधर उधर होगा ही और अपने आप उसमें चाबी भरती जाएगी। न तुमको बैठ के उसमें चाबी भरना है और न तुमको उसमें 10 रुपया का बैटरी का सेल लेके ही डालना है। हाथ हिलेगा ही, उसमें चाबी भर जाएगी। इसी प्रकार परमात्मा ने सृष्टि ऐसी बनाई कि उसको बार बार इसमें हस्तक्षेप नहीं करना पड़ता। तुमने अनाज का बीज डाला, खाद डाली, अनाज पैदा हो गया, अनाज खाया पिया हुआ फिर खाद रूप में परिणत हो गया, उससे फिर जो गेहूं पैदा हुए थे उसमें से एक बीज पड़ा, उसने फिर गेहूं को पैदा कर दिया। समुद्र से बादल बनकर के उठा, पहाड़ पर जाकर के बरसा, नदी के द्वारा वो जल बहता हुआ फिर समुद्र में पहुंच गया। बीच में उस पानी ने अनेक काम किए, बीच में उस अन्न ने अनेक काम किए, तुम्हारे शरीर में गया, उससे तुम्हारा रक्त बना, मांस बना, सब कुछ किया, पर अंत में जाकर के फिर मिट्टी रूप ही हो गया। इस प्रकार से परमेश्वर की सारी सृष्टि ऐसी है जो गोल गोल अपनी सामर्थ्य से खुद घूमती है। हम लोग भी ऐसे ही घूमते हैं। वो आचार्य शंकर कहते हैं, कर्माणि देह योगार्थम देह योगे प्रिया प्रिये ध्रुवे स्याताम ततो राग द्वेषश्चैव तत्क्रिया। हमने कर्म किए, उन कर्मों से हमको शरीर मिला, कर्माणि देह योगार्थम। अब शरीर मिला तो हमको चीजें प्रिय और अप्रिय लगती हैं। शरीर मिलने पर ही प्रिय अप्रिय है। सर्दी लगेगी किसको? शरीर को। भूख प्यास सब कब तक है? जब तक शरीर है। जो चीज अच्छी लगेगी उसकी तरफ जाएंगे, राग होगा। जो चीज अप्रिय लगेगी उससे दूर जाएंगे, द्वेष होगा। इस प्रकार से प्रवृत्ति और निवृत्ति किसी चीज को लेने जाएंगे, किसी से दूर हटेंगे, इसके द्वारा फिर कर्म हो जाएगा। अब वो जो कर्म हो गए फिर वो अगले शरीर को देने में कारण बन जाएंगे, गोल गोल घूमते रहोगे। परमेश्वर को बीच में आकर के कोई हस्तक्षेप नहीं करना पड़ता, अपने आप चलता रहता है। तो ये परमेश्वर के सृष्टि की विशेषता है, चीजें अपने आप अपनी गति से घूमती रहती हैं। इस चक्र के कारण ही ये अगाध है, ये कभी समाप्त नहीं। कई बार लोग सोचते हैं कि ऐसा होते होते अंत में संसार निवृत्त कभी तो हो जाएगा, कभी भी निवृत्त नहीं होना है, क्योंकि कभी भी शुरू भी नहीं हुआ। ज्ञान के द्वारा तुम इससे हट जाओ तो हट जाओ, ये सोचो कि ये संसार चलते चलते खत्म हो जाएगा तो खत्म होना नहीं है, क्योंकि ये तो गोल गोल चलता रहेगा। अब हम लोगों का गोल गोल चलना प्रत्यगात्मा का यहां बतला रहे हैं। हम लोग कभी जागृत अवस्था में है, जागृत से स्वप्न में जाते हैं, स्वप्न से सुषुप्ति में जाते हैं, सुषुप्ति से फिर जागृत स्वप्न में आ जाते हैं। इस प्रकार से इसके अंदर गोल गोल घूमते रहते हैं। इसी गुलाई को बतलाने के लिए ओम को भी हम लोग गोलों के द्वारा ही लिखते हैं। इसी गुलाई को बतलाने के लिए शिवलिंग भी गोलाकार का ही होता है। तो ये जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति के अंदर निरंतर हम घूम रहे हैं, ये जो घूमने का प्रकार है, इसको आगे उपनिषद बतला रही है। तो ये बतलाया कि ओंकार ध्येय ब्रह्म है उपाधि को लेकर के, और वही शुद्ध अवस्था में आने पर ये उपाधि ऐसी है कि इस ज्ञान को दे देती है। अब ये जो ज्ञान का प्रकार जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों में कैसे घूमते हैं, ये आगे बतलाएंगे।
उच्चारण पर तो कोई ध्यान ही नहीं, कुछ भी किसी भी समय उच्चरित होता रहता है। सारा वेद समाप्त होकर के कृष्ण यजुर्वेद का समापन होने वाला है, ब्रह्म विद्या का प्रसंग आ रहा है। अकस्मात वहां पर श्रुति उच्चारण की बात करने लगती है। भगवान भाष्यकार आचार्य शंकर लिखते हैं, ब्रह्म विद्या के प्रसंग में जहां अर्थ प्रधानता है, वहां ये उच्चारण का विचार क्यों कर रहे हैं। भाष्यकार कहते हैं, अर्थ प्रधान ब्रह्म विद्या के अंदर उच्चारण के प्रति प्रमाद न हो इसलिए यहां श्रुति ने लिख दिया। ये वाक्य याद रखने का है, क्योंकि आजकल किसी से कहें तुम्हारा शब्द उच्चरित ठीक नहीं हो रहा है तो आदमी कहता है समझते हो भाई, इसलिए वहां श्रुति ने इसका विचार किया। क्योंकि यदि शब्द का उच्चारण गलत हुआ तो उसके स्पंद गलत हो जाएंगे, उसका जो ठीक प्रभाव पड़ना है वो नहीं पड़ पाएगा। शब्द शक्ति अचिंत्य है, इसलिए केवल समझ गए इतना मात्र करके शब्द शक्ति की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शब्द के साथ उसके स्पंद हैं। इसलिए यहां पर कह दिया सर्ववाच्यत्वात् प्रणवात्मकम्, ओंकार सबका वाच्य है, सब कौन है तो सबका अर्थ श्रुति ने किया है सर्वम खलु इदम ब्रह्मा, सर्व माने ब्रह्मा, क्योंकि एक ब्रह्म ही सारे रूपों में अज्ञान के द्वारा प्रतीत हो रहा है। सर्ववाच्यत्वात् कह करके कह दिया ब्रह्म को बतलाने वाला यह ओम है, साक्षात ब्रह्म का वाक्य है। महर्षि पतंजलि भी इसीलिए कहते हैं तस्य वाचक प्रणव, परमात्मा का वाचक कौन है तो प्रणव है। प्रणव माने ओंकार, प्रणवात्मकम्। अब यह जो ओंकार है देवाश्चेति संधत्तां सर्वेभ्यो दुःख भयेभ्यः संतारयतीति तारणात्तारः, ये परब्रह्म का प्रतिपादन करता है इसलिए ये संसार से तारह तारने वाला है। काशी में भगवान शंकर ने मोक्ष का सदावृत क्षेत्र खोल रखा। सदावृत क्षेत्र जानते हो ना, जहां पर जो आवे उसको भोजन दिया जाए। जैसे ऋषिकेश में चले जाओ वहां ये नहीं देखा जाता तुम कितने पढ़े हो, नहीं पढ़े हो, सच बोलने वाले हो, झूठ बोलने वाले हो, कुछ परीक्षा नहीं है। भिक्षा पात्र लेकर के वहां खड़े हो गए उन्होंने तो चाहे बड़े से बड़ा विद्वान पहुंच जाए, ब्रह्मनिष्ठ पहुंच जाए तो भी पांच फुलके देने। और चाहे भी पढ़ा लिखा कोई मूर्ख चोर पहुंच जाए तो भी पांच फुलके देने। ये सदावृत क्षेत्र है। ठीक इसी प्रकार से भगवान शंकर ने काशी में मोक्ष का सदावृत क्षेत्र खोल रखा है। चाहे कोई ब्रह्म हत्यारा पहुंच जाए और चाहे बड़े से बड़ा वेदवेत्ता ब्रह्मनिष्ठ पहुंच जाए, बोलन को एक जैसी मुक्ति दे देते हैं। आजकल के लोगों को ये बात गले नहीं उतरती, क्योंकि सदामृत क्षेत्र आजकल लोगों के गले उतरता नहीं। लोग कहते हैं बिना काम किए कोई रोटी क्यों खावे। एक बार हमसे कोई कहने लगा, महाराज बिना परिश्रम किए खाना तो बुरी बात है। हमने कहा फिर ये सब बंदरों को लगाओ किसी नौकरी में, चींटियों को पकड़ के लगाओ कुछ काम धंधा करने में। अरे संसार में खरबों प्राणी जिनको गिन नहीं सकते, चींटी है, दीमक है, दुनिया भर के बड़े से बड़े हाथी है, उन सबको परमेश्वर भोजन दे रहा है बिना काम किए। क्या एक मनुष्य को ही तुम इतना गया बीता समझते हो कि इसको खाने का अधिकार नहीं? जिसको परमेश्वर ने पैदा किया है उसके लिए भोजन परमेश्वर ने साथ ही पैदा किया है। ये पाश्चात्य देशों से हमारी विचारधारा आई, मेहनत करे तो खावे। बंगाल में एक ब्राह्मण समाज हुआ है, अभी भी है, अब उसका प्रभाव कम हो गया। वो लोग ईसाइयत से ज्यादा प्रभावित हैं तो ईसाई ढंग की प्रार्थना करते हैं। ईसाई लोग जब भोजन करने बैठते हैं तब वो भगवान से कहते हैं, भगवान आपको बहुत बहुत धन्यवाद है जो हमको खाने को रोटी दी। अब उससे प्रभावित होकर वो ब्रह्म समाज वाले भी ऐसे ही प्रार्थना करते थे। उस समय जो ब्रह्म समाज के नेता थे केशव चंद्र, वो एक बार रामकृष्ण परमहंस से कहने लगे, हमारे यहां की प्रार्थना चल के देखी। तो रामकृष्ण परमहंस वहां चले गए। जब सब कुछ उनका हो गया, वो ईसाइयों के ढंग से उनकी प्रार्थना होती है, सब होता है, उठक बैठक सब होती है। अब बाद में केशव चंद्र से उनने पूछा कि आपको कैसे लगा। उन्होंने कहा, भाई तुम्हारी दो बात समझ में नहीं आई। एक तो तुमने कहा कि सब लोग ध्यान करो भगवान का, तुमने सबकी तरफ देख रहा था तो जानते हो सब कैसे दिख रहे थे। जैसे बंदर डाल पर बैठा हुआ हो और सामने के फल पर कूदने की कोशिश करे तो चुप बैठा होता है, जैसा ही बैलेंस बना वैसे ही खट उछल करके वो फल तोड़ लेगा। इसी तरह से तुम्हारे वहां जितने ध्यान में बैठे हुए थे वो सब जैसे ही ध्यान का समय खत्म हो गए वैसे ही खट आंख खोल रहे। अंग्रेजों के देखा देखी अपने यहां, अब कोई जब मरता है, अब पहले तो अपने मरते थे तो उसके लिए गीता पाठ करते थे, गरुड़ पुराण रखवाते थे,